जीवन मरण गति फूल के कदम कालिंदूल कदम रचना बेदीर पर सब रचना बेदीर पर सब राधा कृष्ण जुगल जीवन मरण गति श्याम गौरंग चंदन गौरंगो चंदन चंद्र चंद्र राधा कृष्ण प्राण जीवन माला जीवो दो भाषिया মারা পিমালা বিবদ হাল চলে অধর তোরে কচুর তাম্বুরে অধর তোরে কচুর তাম্বুরে জীবন মারণ গতি যত সখি বৃন্দ যত সখি বৃন্দ Ha 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 ha.
परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतहस्तवाइंद्रे सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शूल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री राधा दान बिहारी जी की जय। जिताय गोप प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। गौर प्रेमानंदे ज्ञान तीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। यहाँ बरसाना धाम में और सारे ब्रज भूमि में हम कई लीलाएं सुनते आए हैं है कृष्ण और उनके पार्षदों की ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही आवश्यक भी है, और इससे रस बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। परंतु इन लीलाओं का श्रवण करने के साथ साथ तत्व को भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अगर केवल लीला हम सुनेंगे तो भावुक हो जाएंगे, और केवल तत्व सुनेंगे तो हृदय कठोर हो जाता है। तो हमें न केवल साधारण तत्वज्ञानी बनना है, न केवल हमें भावुक बनना है, हमें चाहिए भक्ति भाव का अनुशीलन करना, परंतु गुरु साधु और शास्त्रों के आधार पर। यह प्रभुपाद जी की पद्धति थी। प्रभुपाद जी ने भी इसी बात को अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सीखी थी। जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड आए थे तो एक महीने पूरे वो अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ वहां पर राधा कुंड में रहे थे, और ये हम सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि राधा कुंड में बैठकर राधा रानी की लीलाएं तो की होंगी लेकिन बहुत कम। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हर एक दिन 30 दिन लगातार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के ऊपर प्रवचन दिया। 30 दिन केवल एक श्लोक के ऊपर, और जो तत्व है राधा कुंड में बैठते हुए, जो कि सबसे ऊंची लीला स्थली है राधा कृष्ण की। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह ठीक समझा कि उनके शिष्यों को तत्व सबसे पहले समझना चाहिए, और तत्व समझेंगे साथ साथ लीला सुनेंगे तो फिर रस की कोई सीमा नहीं है। जब इन तीर्थ स्थानों में आएंगे जैसे बरसाना आदि, तो हम यहाँ पर वास्तव में इस वृंदावन के रस का आस्वादन हम कर पाएंगे। एक झलक कम से कम हमें मिल जाएगी। मैं सुन चुके थे कि श्रीमती राधा रानी कोई साधारण जीव नहीं है या असाधारण जीव भी नहीं है। वो कौन है? वो साक्षात भगवान की अंतरंगा लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। और इसलिए क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है, इसलिए राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकात्मानाम अपि भुवे पुरा देह भेदम गतौतौ। एक आत्मनो कि राधा कृष्ण वास्तव में एक हैं, परंतु देह भेदम गतौतौ भुवि पुरा। लेकिन पुरातन काल में वो यहाँ पर प्रकट हुए इस धरातल के ऊपर, और देह भेदम, फिर दो देह लेकर आए राधा कृष्ण। हाँ बोलो, वृंदावन भी राधा रानी है, कृष्ण है, दोनों का व्यक्तित्व है, परंतु आत्मा से हृदय से एक ही है, प्रेम में एक ही है। और ये प्रेम कैसा है? ये कोई साधारण इस संसार का प्रेम नहीं है, राधा कृष्ण प्रणय महिमा विकृतिर लादिनी शक्ति रस्वाद, कि ये जो प्रेम है भगवान कृष्ण का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ, ये लादिनी शक्ति का परिवर्तित रूप है। ये कोई साधारण संसार की आसक्ति नहीं है। श्रीमती राधा रानी विशेष केवल इसलिए नहीं है कि वो भगवान की शक्ति है, वो तो है ही, परंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति अति विशेष है, अतुलनीय है। कोई भी जीव राधा रानी की तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। भले वो ऊंचे से ऊंचे स्तर को क्यों न प्राप्त करे, लेकिन राधा रानी के स्तर को कोई भी अन्य प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए राधा रानी के भाव को महाभाव कहा गया है। केवल भाव नहीं, महाभाव। इस महाभाव का अधिकार केवल श्रीमती राधा रानी का है। तो श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्री कृष्ण की, बल्कि भक्ति की सागर हैं। और जो भी भक्ति करते हैं इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और बहुत इस आध्यात्मिक सृष्टि में भी, उनको अगर ठाकुर जी या भगवान की भक्ति करनी है तो श्रीमती राधा रानी की कृपा आवश्यक है। श्रीमती राधा रानी के कृपा सागर का एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए तो हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम का उदय होगा। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम विशेष है, सर्वश्रेष्ठ गोपी है। इतनी सारी गोपियां हैं ब्रज में, अनगिनत गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ब्रह्म संहिता में भी भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है कि लक्ष्मियां नहीं हैं। साधारणतः यह समझा जाता है कि वैकुंठ लोकों में नारायण के साथ लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। हर एक वैकुंठ लोक में तो एक लक्ष्मी देवी है जो नारायण के उस रूप की सेवा करती हैं, परंतु गोलोक वृंदावन में कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं, सहस्त्र शतक। और ये सारे गोपियां लक्ष्मी देवी की उद्गम है, स्रोत हैं। रावल में भी हम चर्चा कर रहे थे, प्रश्न के उत्तर में हम कह रहे थे कि श्रीमती राधा रानी से अनेक गोपियां उत्पन्न होती हैं। जो भी ब्रज की गोपियां हैं वो सब श्रीमती राधा रानी के अंश हैं। गोपियों से उत्पन्न होते हैं द्वारका की महिषियां, जो पठरानियां थी भगवान कृष्ण की द्वारका में, वो गोपियों से आती हैं। और फिर गोपियों और द्वारका के पठरानियों से उत्पन्न होती हैं वैकुंठ की लक्ष्मियां। तो ऐसा नहीं है कि गोलोक वृंदावन में लक्ष्मी नहीं है, लेकिन आदि लक्ष्मियां सब वहां पर हैं। और आदि लक्ष्मी तो है, आदि गोपी है श्रीमती राधा रानी। ऐसे कहा जाता है कि इन कोटि कोटि गोपियों में से 16,108 गोपियां प्रमुख हैं। इन 16,108 गोपियों में से 108 प्रमुख हैं। इन 108 गोपियों में से 8 प्रमुख हैं। इन 8 गोपियों में से 2 प्रमुख हैं। 2 गोपियों में से 1 प्रमुख है और उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। तो वो सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, भक्ति की सागर हैं और स्वयं सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेमी हैं। तत्व राधा रानी का प्रेम इतना महान है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसको समझ नहीं पाते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। गोलोक वृंदावन में रहकर कृष्ण भगवान समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी को किस तरह का अनुभव हो रहा है उनका प्रेम करके। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं श्री राधाया प्रणिमा राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है वो समझना चाहते हैं। प्रणय मतलब प्रेम और महिमा मतलब महानता। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की प्रे का प्रेम जो है कितना महान है वो भगवान श्री कृष्ण समझ नहीं पा रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, उत्सुक है श्री कृष्ण जानने के लिए राधा रानी के प्रेम की महानता को। दूसरी बात, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। अद्भुत मधुरिमा वा मदीयः, कृष्ण कहते हैं निस्संदेह मेरे अनंत गुण हैं और ये सारे गुण ऐसे हैं कि मुझे वो माधुर या मधुरिमा या माधुर्य के सागर या समुद्र बनाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जब इन गुणों को का अनुभव करती हैं तो उनको क्या स्वाद होता है, किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी मेरे गुणों का स्वाद लेती हैं, मैं वो जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को जानने की बात तो दूर है, वो स्वयं अपने गुणों को भी जान नहीं पा रहे कि मेरे गुण कितने मधुर हैं और कितने आकर्षक हैं मेरे गुण, स्वयं श्री कृष्ण समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी इतना स्वाद ले रही हैं उनके गुणों का, तो मेरे में क्या होगा इतने अच्छा कि श्रीमती राधा रानी भी इतना स्वाद ले रही हैं। आपने पहले भी सुनी होगी कि जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे आपकी माया शक्ति का प्रदर्शन देखना है, तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने प्रलय काल के का अनुभव कराया। मार्कंडेय ऋषि प्रलय जल में बहुत लंबे समय तक चिरकाल तक तैरते रहे और कोई नहीं था वहां पर। अचानक दूरी में उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष का पत्ता है और वहां पर एक अद्भुत बहुत ही प्यारा बच्चा है और ये बच्चा सांवले रंग का है और ये अपने चरण कमलों को चूस रहा है, पैर के चरणों के अंगूठे को चूस रहा है। तो इतने आकर्षित हुए इस बालक से कि मार्कंडेय ऋषि इनका आलिंगन करने गए, तब ये बच्चा जो है उनके नसिकाओं से उनके शरीर के भीतर श्वास के साथ चला गया। फिर जब सांस बाहर लिया मार्कंडेय ऋषि ने तो ये बालक फिर से आए बाहर। तो ये कौन थे बालक? श्री कृष्ण। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि बाद में वो फिर से अपने आश्रम में बैठे हुए हैं जहां वो तपस्या कर रहे थे, कुछ प्रलय नहीं है कुछ नहीं है। तो उन्होंने भगवान का दर्शन ऐसे किया था। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में होकर अपने चरणों के अंगूठे का कुछ चूसते क्यों हैं? वो जानना चाहते हैं कि उनके चरण कमलों का क्या स्वाद है जिसके पीछे उनके भक्त इतना उन्मत्त हो रहे हैं। क्यों भक्त भवरों की तरह उनके चरणों के आसपास घूम फिर रहे हैं मानो कि वहां कोई शहद हो, मधु हो, मधुमक्खी की तरह श्री कृष्ण रूपी मधु का संग नहीं छोड़ना चाहते हैं वो। तो श्री कृष्ण नित्य किशोर हैं, तो किशोर अवस्था में अगर कोई अपने चरणों पैरों के अंगूठा चूसे तो ये तो बहुत ही विचित्र दृश्य होगा, लेकिन बच्चा अगर चूसता है अपने अंगूठे को तो उसमें कोई अद्भुत या कोई विचित्र बात नहीं मानता उसको। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप स्वीकार करते हैं तो ऐसे अपने अंगूठे को चूसते हैं जानने के लिए कि उनके चरण कमलों में क्या स्वाद है। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जानना चाहते थे कि मेरे अंदर जो अद्भुत से अद्भुत मधुर गुण है वो इनमें क्या ऐसी अद्भुतता है कि श्रीमती राधा रानी इतना स्वाद ले रही हैं। दूसरी बात और तीसरी बात, सौख्यम चास्या मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात। और जब श्रीमती राधा रानी मेरे संग का, मेरे गुणों का ऐसा स्वाद ले रही हैं, तो कितना दिव्य आनंद उनको प्राप्त होता है ये श्री कृष्ण जानना चाहते हैं। ये तीन बातें हैं, पाढ्य समजनी शचि गर्भ इंदु। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इसलिए वो श्री कृष्ण इसी भाव को स्वीकार करके समजनी जन्म लिए शशि माता के गर्भ में, और ऐसे जन्म लिए जैसे कि समुद्र में चंद्रमा का उदय होता है। क्या चंद्रमा का जन्म समुद्र से होता है? हाँ, जब चंद्रमा का उदय समुद्र के किनारे से दिखाई पड़ता तो ऐसा लगता है कि समुद्र से चंद्रमा का जन्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ से प्रकट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जन्म हुआ है। जिस तरह से हमारा जन्म होता है वैसे ठाकुर जी का जन्म नहीं होता है। तो उसी प्रकार से इस बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वही श्री कृष्ण अब शची देवी के गर्भ से प्रकट हुए, इसी भाव को श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर तद भावाढ्य समजनी शची गर्भ, शची माता के गर्भ से और ऐसे प्रकट हुए जैसे समुद्र से चंद्रमा। तो क्या था उनका नाम जब प्रकट हुए? तो क्या था उनका नाम?
निमाई।
और कौन से नाम से विख्यात है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके कांति को स्वीकार करके आए हैं। क्यों आए हैं? इन तीन कारणों के लिए जिनका वर्णन हमें अभी किया। तो पहला कारण क्या है? रानी का प्रेम कितना महान है वो जानने के लिए। दूसरी बात, स्वयं कृष्ण के अंदर वो अद्भुत मधुर गुण कौन से हैं जिसका स्वाद श्रीमती राधा रानी लेती हैं, वो दूसरा कारण। और तीसरा कारण, श्री कृष्ण के गुणों का स्वाद लेते लेते श्रीमती राधा रानी को कितना दिव्य आनंद प्राप्त होता है ये जानने के लिए। इन तीन कारणों के लिए स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए। भक्त के रूप में कहने का मतलब है कि वह है वो श्री कृष्ण, परंतु भाव एक भक्त का लेकर आए। तो कौन से भक्त का लेकर आए भाव? किसी साधारण भक्त का नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए। तो कहने का मतलब ये है कि श्रीमती राधा रानी इतनी महान है, उनका प्रेम इतना विशेष है कि स्वयं श्री कृष्ण इसको समझ नहीं पाते हैं, और श्री कृष्ण इस प्रेम को समझने के लिए स्वयं अवतीर्ण होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन राधा भाव द्युति, द्युति मतलब कांति, शरीर की कांति, राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके आए हैं, इसलिए उनका नाम हुआ गौरांग, गौरांग महाप्रभु। राधा रानी का और एक नाम है गौरांगी, गौर मतलब स्वर्ण। सो जिनका अंग, जिनका शरीर, दिव्य शरीर स्वर्ण रंग का है वो राधा रानी का नाम है गौरांगी। और जब कृष्ण गौरांगी के भाव को स्वीकार करके, उनके कांति को स्वीकार करके आते हैं तो उनका नाम होता है गौरांग, गौरांग महाप्रभु। तो यहाँ इस स्थान में वही राधा रानी प्रकट हुई साक्षात गोलोक वृंदावन से। यहाँ राधा रानी का कोई विस्तार नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष राधा रानी यहाँ पर आई। श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए, और यहाँ जो भी लीलाएं हुई उसी तरह की लीलाएं हैं जो कि गोलोक वृंदावन में होती हैं। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है कि हम सब आज यहाँ पर आए हैं। हाँ, हमें थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा, इतना उतार चढ़ाव यहाँ पर है, पहाड़ चढ़ना उतरना, फिर कभी धूप में आना जाना, परंतु ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम पा रहे हैं वो इतना महान है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी विरला ही किसी एक जीव को ये सौभाग्य प्राप्त होता है इन लीला स्थलों में आकर प्रत्यक्ष रूप से इनका दर्शन करना और यहाँ की कथाएं सुनना। इसलिए हर पल हर क्षण हमें इस बात को हमारे मन में रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपना शहर छोड़कर दूसरे जगह पर्यटन के लिए जाते हैं, पर्यटक का भाव अलग होता है। पर्यटक का भाव कैसे होता है? मनोरंजन का भाव होता है। वो ऊब गया होता है अपने शहर से, अपने दैनिक कार्यक्रम से, और सोचता है थोड़ी छुट्टी ले लूं, थोड़ा जाऊं वहां, कुछ आराम करूं, आनंद ले लूं, होटल में खाऊं, होटल में रहूं, टैक्सी में घूमूं फिरूं। लेकिन वृंदावन धाम ब्रज भूमि आने का उद्देश्य केवल एक पर्यटक का नहीं है। यह हमारा भाव होना चाहिए कि हम बहुत आभारी हैं कि यहाँ पर हमें ठाकुर जी ने प्रवेश करने का अवसर दिया है। जैसे हम आपकी यात्रा के पहले ही दिन चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वृंदावन क्या खरीद कर नहीं आ सकते हैं, टिकट खरीद कर नहीं आ सकते। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम गोवा एक्सप्रेस में टिकट लेकर आए और हम यहाँ पहुंच गए तो हम वृंदावन पहुंचे। जी नहीं, वृंदावन पहुंचने का मतलब है वृंदावन के भाव को स्वीकार करना। केवल शारीरिक रूप से ब्रज के भौगोलिक सीमाओं के भीतर आना इतना पर्याप्त नहीं है। ब्रज भूमि के ब्रजवासियों के भाव को स्वीकार करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमें अन्य कोई विचार हमारे मन में नहीं लाने चाहिए सिवाय ब्रज का भाव। और कोई अगर सेवा के लिए, अन्य वैष्णवों की सेवा के लिए कोई आवश्यक बातें हैं तो उनके बारे में हम सोच विचार या बातचीत कर सकते हैं। तो यह हर एक क्षण हमारा बहुत मूल्यवान है, इसको कृपया याद रखिएगा। थोड़ा कुछ कष्ट हुआ, थोड़ी नींद कम हो गई, तो इसमें कोई परवाह नहीं है, कर हम इसका पूरा लाभ नहीं लेंगे तो ये घाटे का सौदा है। तो यहाँ आकर अगर पूरा फायदा लेना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जब वो कुछ खर्च करता है, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो बल हो, बुद्धि हो, धन हो, कुछ भी हो, तो वो चाहता है कि जो मैंने खर्च किया उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा लाभ मुझे मिले, है ना। हर कोई व्यक्ति सोचता है। हम जब बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो 10 रुपए में जितनी सब्जी मिले उतना हम लेना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से हम बहुत कुछ खर्च करके, समय इत्यादि खर्च करके यहाँ पर आए हैं, तो अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। यहाँ का हर एक क्षण मूल्यवान है, ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि हम साक्षात गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट हुए हैं। और इस गोलोक वृंदावन में और उस गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। तो इस भाव से हमें परिक्रमा करनी चाहिए। ये दान बिहारी मंदिर है, इसकी लीला तो हम सांखड़ी खोर में बोल चुके हैं। साथ साथ यहाँ के पुजारी ये भी बताते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी को बांसुरी दान दी थी और फिर यहाँ पे झूले में भी बैठे थे। कभी कृष्ण बैठते राजा रानी झूलाती, कभी ललिता सखी करती और राधा रानी बैठ जाती कृष्ण के साथ, ऐसे यहाँ झूला हुआ और इस प्रकार के अनेक लीलाएं यहाँ होती रहीं। जा सकती है तो ये सारे पावन भूमि हैं। कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए कि यहाँ साक्षात राधा कृष्ण लीला अभी भी कर रहे हैं। की बातें हम बहुत सुनते हैं हमारे दैनिक जीवन में, यहाँ आके हमें न केवल सुनना चाहिए साथ साथ इसका पचन भी करना चाहिए जो हम सुनते हैं, और इसी भाव का अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा दान बिहारी की जय। और यहाँ पे पास में है कुशल बिहारी मंदिर, जैसे हमने पहले बताया जयपुर के राजा ने बनवाया था,
दर्शन तो बंद हो गया।
हाँ, यहाँ तो दर्शन बंद हो गए, लेकिन कम से कम मंदिर का दर्शन तो आप कर सकते हैं।
फिर राजा रानी के दर्शन का भी ध्यान रखो।
हाँ, कितने बजे?
2:15
दो बजे बंद होता है ना। अभी हम जाएंगे कीर्तन करते करते, और यहाँ जयपुर मंदिर से होकर दर्शन तो बंद हो गए हैं, लेकिन मंदिर के बीच में से ऐसे जाएंगे और सीधे श्रीजी मंदिर जाएंगे। वहाँ दर्शन थोड़ी देर में बंद होंगे, 2 बजे शायद बंद हो जाएंगे, 1:30 बजे भोग लगता है, 2 बजे बंद होंगे और वहाँ जाके खूब कीर्तन करेंगे। तो आप बड़े उत्साह से वहाँ कीर्तन कीजिएगा, ऐसा मत सोचिए कि अभी परिक्रमा का अंत हो रहा है, बहुत थक गए हैं इसलिए कीर्तन में उत्साह नहीं बताएं, नहीं। सबसे अधिक उत्साह वहाँ होना चाहिए, ठीक है? तो जल्दी से कृपया सब चलिएगा और सब एकत्र होकर वहाँ चलिए। हरे कृष्णा।